प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
माता पिता भाई बहनों का,
माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार।
इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
तो कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
परम पिता शिव बागबान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
रूहानी रौनक से गुलशन हो,
रूहानी रौनक से गुलशन ये तो गुलों गुलजार।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे जान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
ओ बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
हम उन पे बलिहार हुए हैं,
हम उन पे बलिहार हुए हैं, वो हम पे बलिहार। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
ओम शांति। तो आज प्रभु परिवार का दूसरा दिन, शिव बाबा का राज्य दरबार सजा हुआ है। तो कल हमने देखा था, क्या देखा था कल? स्नेह। हाँ जी, पुरुषार्थ की रेसिपी, पुरुषार्थ स्नेही कैसे बनना है। जो पुरुषार्थ स्नेही है वो परिवार का भी स्नेही है, उसे सर्विस भी स्नेह हुआ और बाबा से भी स्नेह। तो आज दूसरी कड़ी है, इसमें बहुत सारी बातें हैं आज कि इस प्रभु परिवार में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कौन कौन से ऑब्स्टेकल बिघन आ सकते हैं, कैसे उनको पार करना है, कौन कौन सी शक्ति चाहिए, कौन कौन से गुण चाहिए, तो उस पर हम देखेंगे। आज की मुरली है 18/5/69 की। तो इसमें बाबा कह रहे वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर परखने का गुण नहीं होगा, कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी, खौफनाक। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं। तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, बेमेन रूप से। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। तो एक तो ये है जो अलग अलग रूप से परखने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे उनकी वृत्ति क्या है। दूसरा, अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऊपर वाला है ज्ञान के हिसाब से कि सिर्फ रटे रटाए हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी इनके जीवन में है। दूसरा है अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है, ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे दिन प्रतिदिन। पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं, आपदाएं, अकाली मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उनों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए ये भी बहुत संभाल रखनी है, कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। वो खिलाते खिलाने की जब उसकी वो धुनी लगा के उसको सुगाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है, हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं होती, ये बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है, उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है ये भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहां नुकसान भी हो सकता है, और ऐसे होता भी है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उनके स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। तो इसमें पहली बात जो देखी हमने, बाबा कह रहे हैं परीक्षाएं आएंगी, आत्माएं आएंगी जो अंदर से एक बाहर से दूसरी होंगी, ऐसे समय पर कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। और परखने की शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है, कैसे हमारे में परख शक्ति बढ़ेगी ताकि हम सामने वाले को परख सकें, आत्मान्य स्थिति, उसके लिए भावन का एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जितने एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी उतना हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी। मन एकाग्र होगा, सारी शक्तियां अपने आप काम करेंगी, आने वाले को परख सकेंगे। और दूसरा, परखने की शक्ति बढ़ेगी क्लियर बुद्धि। जितना बुद्धि हमारी क्लीन एंड क्लियर है उतना हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी। और बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी ज्ञान चिंतन से, पठन पाठन से, चर्चा करने से, छोटे छोटे योग के अभ्यास करने से। बाबा कहते हैं बुद्धि को क्लियर रखो, ज़्यादा सोचने की आदत नहीं डालो, नहीं तो ज़्यादा सोचते रहते हैं हमारी बुद्धि में और किचड़ा भर जाता है। व्यर्थ को सोचने के बजाय या पास्ट की बातों को सोचने के बजाय, जिन बातों का कोई सार नहीं है, जो निकल चुकी हैं, जिनसे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, उनको सोचने के बजाय एक बाप को याद करो तो एकाग्रता बढ़ेगी, परख शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि क्लियर होगी। तो परखने की शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि बाबा ने कहा आत्माएं आएंगी आर्टिफिशियल रूप से, अर्थात देखेंगी कि ये रटे रटाए तो नहीं हुए, इनके अंदर शक्ति है, ज्ञान योग का बल है, या केवल बाहर से दिख रहे हैं। और उसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, हाँ जी, उनके मन को रीड करने के लिए, नहीं तो बाबा के तस्मे पर धोखा खा जाएंगे। और ऐसे होता भी है, उसके लिए ज़्यादा स्नेही नहीं, शक्ति रूप बनना है। तो कल तो था पुरुषार्थ से स्नेह, आज है शक्ति रूप बनना है। तो परखने की शक्ति को बढ़ाना है। दूसरा है, अशुद्ध आत्माओं की बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं, आपदाएं, अकाली मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उनों की जो वासनाएं रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्मा के रूप में भटकती हैं। इसलिए ये भी बहुत संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग अग्नि से काम लेना है। तो अशुद्ध आत्माएं अगर हमारे आसपास मंडरा रही हैं या कोई हमारे में प्रवेश कर गई है, उसकी क्या निशानी है? मन बुद्धि का भटकना भी अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर है, या हमारी स्वयं की अशुद्धियों का वाइब्रेशन, जो हम लंबे समय से व्यर्थ सोचते रहते हैं, या पास्ट जन्मों का हिसाब किताब है, अगर उसके बारे उसी वो ही हम अगर योग बल से उसको नष्ट नहीं करते हैं, तो वो ही अशुद्धियाँ हमें ही बाधित करती रहती हैं। और अशुद्ध आत्माएं अगर हमारे पर प्रभाव डालती हैं तो और क्या निशानी है? एक तो मन बुद्धि भटकेगा और अशुद्ध कामनाओं की जागृति होगी। यहाँ बताया बाबा ने, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त नहीं हुई, अर्थात अशुद्धियों का प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है। इतने लंबे समय से अगर हम राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति हमारी उस आसन पर हम स्थित नहीं हो पा रहे हैं, बार बार उससे बुद्धि इधर उधर जा रही है, नीचे जा रहे हैं, सीट पर सेट नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात अशुद्धियों का प्रभाव हमारे ऊपर है। और अगर अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर है तो और क्या निशानी होगी? क्या? हाँ जी, उसके अधीन हो जाएंगे, परवश हो जाएंगे, और खाने पीने में भी हो सकती है ना। कौन सी शुद्ध आत्मा? जो अकाली मृत्यु, जिन संकल्पों के साथ, जिन वासनाओं के साथ अकाली मृत्यु के कारण वो आत्मा श्री छोड़ेंगी, तो वो अपनी तृप्ति के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन आत्माओं में प्रवेश करेगी जो कमजोर होंगी। और कमजोर आत्मा कौन होंगी? उसके बहुत सारे, इधर पहले भी सुनाया था, एक बार एक बच्ची में, छोटी बच्ची में आत्मा आई थी, तो उसको हमने पूछा था, आप इसके अंदर क्यों आए? बोला, ये अमृत वेला नहीं करती है, ये एवर हेल्दी की बात है। हाँ, वो टोली खाने के लिए आई थी। तो हमको देखना है, क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन करना अर्थात कमजोरियों का आह्वान, अर्थात अशुद्ध आत्माओं का आह्वान, तो हमारे प्रभु हावी रहेंगी। तो सुप्रीम सत्ता के साथ, सुप्रीम अथॉरिटी के साथ अगर हमारा कनेक्शन है तो हम शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा ना, अशुद्ध आत्माएं भी कम पावरफुल नहीं होती हैं, और उनका प्रभाव क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, ज्ञान योग भारी रहेगा, ब्राह्मण जीवन में रुचि नहीं बढ़ेगी पुरुषार्थ की। तो हमको स्वयं को जांच करना है कि अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव तो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं, क्योंकि उनकी वासनाएं जो है वो उनकी तृप्ति के लिए काम तो करेंगी, चाहे वो खाने पीने के रूप में है ना, खाएगा कोई और ही अंदर बैठ के, खुद की इच्छा तो कम होगी, लेकिन जब वो दूसरी प्रवेश कर जाएगी तो बहुत कुछ खा पी के चला जाएगा वो, और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा फिर। तो कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज़ को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है, हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है। कितना अच्छा पुरुषार्थ है, हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है। तो यहाँ हम योग के अच्छे अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जैसे एक ज्वाला रूप यज्ञ रचा है, ज्वाला उसमें धधक रही है और इन आंखों को निकाल के हमने उसमें डाल दिया, जैसे उनको तपा दिया, जैसे इनका शुद्धिकरण हो गया, इन कानों को निकाल के उसमें डाल दिया और देखना इनका शुद्धिकरण हो रहा है। हर कर्मेंद्रिय को बाबा ने कहा तपाना है, ज्ञान सूर्य ऊपर से अवतरित हुआ, यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित हुई और हमने सारी कर्मेंद्रिय को उसमें झोंक दिया। और साक्षी होके देख रहे हैं कि इस देह की जो सारी कर्मेंद्रियां हैं, जो कर्मचारी, जो हमारी सहयोगी है, साथी हैं, वो संपूर्ण रूप से पवित्र बन रही हैं, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, वो सतो प्रधान बन रही हैं। तो कितना अच्छा योग का प्रयोग है, हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई बार नहीं करेंगे। वैसे भी आग जहां जली होती है वहां जानवर नहीं आते हैं, थोड़ा भी कहां ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है, कोई भी कर्मेंद्रिय। एक भी कर्मेंद्रिय पर अगर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारे काबू में नहीं है, वश में नहीं है, तो धोखा होने की पूरी संभावना है। वह अशुद्ध आत्मा भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर भी कम नहीं होती, ये बहुत ध्यान रखना है। माया भी कम नहीं है, परसों की मुरली में था, माया भी गुप्त है, भाव भी गुप्त है, और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। चलो आत्माओं से तो बच गया, बच जाएंगे, फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्भयता की शक्ति, हाँ, और पहले से ही प्रकृति को अच्छी तरह सहयोग देना है, अच्छी तरह प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करनी है। जिसकी हम सेवा करेंगे, जिसका दिल जीत लेंगे, वो स्वतः समय पर सहयोगी बन जाएगा। जो बाबा कहते हैं विनाश के समय दो फुटा के भी प्रकृति आपके सामने रुक जाएगी, तो वो कब होगा, जब पहले से हमने उसको सहयोग दिया है, बड़े प्यार से पांच तत्वों की सेवा की है, एक एक तत्व को बड़े प्यार से समझाना है, उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देने हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन, स्नेह के वाइब्रेशन, परमात्म शक्तियों के वाइब्रेशन, तो समय पर सहयोग देती है। और ये अनुभव भी कर सकते हैं, अगर लंबे समय से हम प्रकृति को सहयोग दे रहे हैं तो ये देह रूपी प्रकृति भी बीमारी होते हुए भी हम उसके वश में नहीं होंगे, वो बीमारियां भी अपने आप दूर दूर चली जाती हैं, और उसमें फिर खाना पीना भी साथ में आ जाता है, वो भी प्रकृति का ही है। तो प्रकृति, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रकृति तो अपना कर्तव्य करेगी, लेकिन उसके लिए ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है, उनका सामना करने के लिए उसमें स्नेह नहीं रखना है, उसमें शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस में स्नेह मूर्त, किस में शक्ति रूप बनना है ये भी सोचना है, इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। नहीं तो कई बार स्नेह दिखाते हैं तो सामने वाला लूट के चला जाता है और ठग लेता है, और ऐसा होता भी है, कई ऐसे ठगे जाते हैं बेचारे, पता नहीं चलता है, नंबर मांगे बैंक अकाउंट का कि हम बैंक से बोल रहे हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे, उसको अपना नंबर देते हैं, फिर ओटीपी बताते हैं, ओटीपी बताया, फिर थोड़ा सा पैसा गया, फिर जो सामने वाला होता है तो फिर वो फ़ोन करता है उसको, फिर दोबारा बड़े स्नेह से बोलता है, धीरे धीरे देखा हमने एक बार लूटने के बाद फिर भी लूट गई, कई बार उसी व्यक्ति ने दोबारा लूट लिया, कैसा हिसाब है। तो वहाँ स्नेह नहीं दिखाना है, शक्ति रूप अर्थात निर्दयी भी बनना पड़ेगा, ज्यादा दयावान बनना भी भारी पड़ सकता है। तो ये भी सोचना, इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है, अगर कोई ऐसा आया और उसको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहां नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उनके स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। तो इसमें एक तो चाहिए शक्तिशाली बनने के लिए निर्भयता की शक्ति, और निर्भयता की शक्ति कब आएगी, योग बल से। जितना योग बल हमारा ज्यादा होगा उतना हम निर्भय बनते जाएंगे, जितना हम बाबा की छत्रछाया में रहेंगे, बाबा को साथी बना के रखेंगे, उतना हम निर्भय बन जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। नहीं तो छोटी मोटी बात आएगी तुरंत डर के सारे हमारा किया कराया पानी फिर देगा वो। इसलिए पुरुषार्थ में हमको कमजोर नहीं होना है, उसको शक्तिशाली बनाना है, अच्छे अच्छे शक्तिशाली संकल्पों के साथ सोमान की सीट पर सेट रह के अच्छे अच्छे योग के प्रयोग करने हैं। थोड़ा भी समय बैठते हैं शक्तिशाली प्रयोग करने हैं, ताकि आत्मा में वो शक्ति की अनुभूति हो कि हाँ हमने कुछ प्राप्ति करके कुछ अनुभव किया है, कुछ महसूस किया है, कुछ परिवर्तन की महसूसता हमको हुई है। तो वो ऐसे शक्तिशाली सोमान एकत्रित करने हैं। मन बुद्धि को क्लियर रखने के लिए बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा हमारे इर्द गिर्द कई रूपों से घूमता रहता है, चाहे वो संगी साथियों के रूप में घूमेगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से है। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर आएंगे जो हमें व्यर्थ में भटकाने की पूरा प्रयास करेंगे। अगर हम शक्तिशाली नहीं है, कमजोर नहीं है, तो हम धोखा खा लेंगे समय पर, और धोखा खाएंगे तो फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करना फिर भारी पड़ जाता है। इसलिए कदम कदम पर बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। तो पहली बात है मन बुद्धि को क्लियर रखना है। अब ये बुद्धि साधारण नहीं है, इस बुद्धि में वो नहीं भरना है, ये कोई डस्टबिन नहीं है जो कुछ है हम इसमें भरते रहे। इसमें ज्ञान के रत्न, अच्छे अच्छे रत्न भरने हैं, इसमें सुमान की माला इसमें भरनी है, गुणों का खजाना भरना है, शक्तियों का खजाना भरना है। इतने अथाह खजाने बाबा ने हमको दिए हैं, तो उनका बुद्धि मन बुद्धि चिंतन करता रहे, मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाए, उसको खुराक मिले, लगे कहाँ ये व्यर्थ है ये समर्थ है, मन बुद्धि वो निर्णय कर सके। तो उसके लिए मन बुद्धि को क्लियर रखना है, उसके लिए क्या करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी ज्ञान का मनन चिंतन करने से। दूसरा, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने का आसान तरीका स्थूल में है, प्रकृति में चले जाओ और एकांत में। और यहां भी बहुत बार बताया, वो जो भी हमारे कमरे में या मधुबन में या कहीं भी जाते हैं, जैसे शांति स्तंभ पर 18 बातें लिखी हैं, सोचो अभी यहां बैठे बैठे कौन से लिखी, मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा। हिस्ट्री हॉल में कौन कौन सी फोटो लगी है, देखो एक एक फोटो को याद करो। हिस्ट्री हॉल के बाहर दादियों की फोटो लगी है, 21 फोटो, पूर्वजों की फोटो कौन कौन सी लगी है, यहाँ कौन कौन सा स्लोगन लगा हुआ है, ओम शांति मन में कौन कौन से स्लोगन लगा, मन बुद्धि अपने पर एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता को बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका है। जो भी स्थिर चीजें चर्म चक्षुओं से दिखाई देती हैं, उनको हूबहू देखना है मन बुद्धि के अंदर, मन बुद्धि एकाग्र होगा। जब इन चीजों पर एकाग्रता का अभ्यास बढ़ जाएगा, तो फिर हम सूक्ष्म रूप से भी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। सूक्ष्म रूप से भी एकाग्रता हमारी सहयोगी बन जाएगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, वृद्धि होगी। और जहाँ एकाग्रता बढ़ गई, वहाँ परखने की शक्ति स्वतः बढ़ेगी। इसलिए परखने की शक्ति के लिए कौन मशहूर था, दीदी मनमोहनी, 1 सेकंड में परख लिखते थे। बाबा ने कहा महारथियों की परखने की शक्ति सामने वाले वाइब्रेशन को देखकर ही परख लिखती है, इतनी महारथियों की शक्ति होनी चाहिए। तो आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है, देख रहे हैं नए नए रूप से माया आ सकती है, सफ़ेद कपड़ों में भी आ सकती है, कब कहाँ किसका क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो सफ़ेद कपड़े में आती है ना। तो हमको देखना है, परखने की शक्ति बढ़ानी है हम, क्योंकि स्वयं को सेफ रखना है, दूसरों को सेफ रखना है, प्रभु परिवार को सेफ रखना है, यज्ञों को सेफ रखना है, ये हमारा कर्तव्य है जो हमको बाबा ने सौंपा हुआ है। लेकिन उसको सेफ करने के लिए पहले स्वयं को सेफ रखना है। दूसरी बात, अशुद्ध आत्माओं का जो प्रभाव होता है, उसके लिए क्या करना है, योग अग्नि में हर कर्मेंद्रियों को तपाना है। तो जो हमारी भी जितनी कर्मेंद्रियाँ, ये हमारी मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, अब इनसे उतना ही हमको सहयोग लेना है। जितना हमने इनसे बुरे कर्म किए हैं, अब उतना ही इनको अपना सहयोगी साथी बनाना है। और उसके लिए योग का प्रयोग बताया, कौन सा योग में तपाना है। तो योग का प्रयोग भी करेंगे, कमेंट्री भी करेंगे बीच में, अभी कर लेते हैं कमेंट, 5-7 मिनट कमेंट्री करेंगे। ओम शांति। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा, मस्तक में विराजमान, साक्षी होकर स्वयं की कर्मेंद्रियों का अवलोकन कर रही हूं। ये कर्मेंद्रियां मेरी सहयोगी साथी हैं। इमेजिनेशन कीजिए कि हमारे सामने यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड में परम धाम से स्वयं ज्ञान सूर्य अवतरित होकर योग की ज्वाला प्रज्वलित कर रहे हैं, उस यज्ञ कुंड में योग अग्नि धधक रही है। अग्नि की बहुत बड़ी बड़ी लपटें स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं। ये वो लपटें हैं जो मेरी सहयोगी साथी कर्मेंद्रियों को संपूर्ण रूप से पवित्र करेंगी। ये योग अग्नि स्वयं ज्ञान सूर्य ने प्रज्वलित की है। ये आंखें, कान, हाथ, पैर, मुंह समेत सारी कर्मेंद्रियां उस यज्ञ में प्रवेश कर गई हैं और बहुत तीव्र गति से, तेजी से योग अग्नि की शक्तिशाली ज्वाला धधक रही है और मेरी सहयोगी साथी कर्मेंद्रियां संपूर्ण रूप से सतोप्रधान, शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इस यज्ञ कुंड से निकलती हुई शक्तिशाली ज्वाला मुझ आत्मा को ही संपूर्ण सतोप्रदान बनाती जा रही है। स्वयं ज्ञान सूर्य उपस्थित हुआ है। वो केवल मेरे लिए उपस्थित हुआ है, मेरा संपूर्ण शुद्धिकरण करने के लिए, कर्मेंद्रियों को, मेरी सहयोगी साथी कर्मेंद्रियों को विश्व सेवा में लगाने के लिए। मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूं ये आंखें संपूर्ण रूप से पवित्र बन गई है। सारे कट, मैल, विकर्म सब भस्म हो गए हैं। तमो प्रधानता समाप्त हो चुकी है। नई दृष्टि इन आंखों में परमात्म शक्तियों की दृष्टि, परमात्म गुणों का इन आंखों में एक नया संकल्प पैदा हुआ है। परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों से आंखें श्रृंगारित हो चुकी हैं। सारी की सारी कर्मेंद्रियां संपूर्ण रूप से शुद्ध हो रही हैं उस महायज्ञ से, यज्ञ कुंड से वो सारी कर्मेंद्रियां निकलकर वापस इस देह में रोपित हो रही हैं, अपना स्थान वापस ले रही हैं। अब ये दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं है, आप भी इस मुख से निकलने वाले बोल साधारण नहीं है, वरदानी बोल, वरदानी दृष्टि, वरदानी हस्त, हर्ष में वरदानी मूरत, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा ने इन कर्मेंद्रियों को शुद्ध किया है। मैं वही चैतन्य मूर्ति हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। वो तप कर, सारी कर्मेंद्रियां तप कर, निखर कर मेरी संपूर्ण रूप से सहयोगी बन चुकी है, जो हर समय हर पल सेवा के लिए तत्पर है। इन कर्मेंद्रियों से निरंतर प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। आज सारे दिन में इसी वक्त सेवा में तत्पर रहेंगे तो शक्तिशाली स्थिति निरंतर बनी रहने से हम अशुद्ध आत्माओं को, भटकी आत्माओं को भी ठिकाना दे सके। ओम शांति। तो ऐसे हम योग के नए नए प्रयोग कर सकते हैं और ये नवीनता ही हमारे ज्ञान योग की रुचि को बढ़ाएगी, क्योंकि बाबा ने कहा अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, अकाली मृत्यु होगी। जिन वासनाओं के साथ, जिन संकल्पों के साथ आत्माएं शरीर छोड़कर जाती हैं, वो अपनी तृप्ति पूरा करने के लिए किसी न किसी को तो ढूंढेंगे जरूर, और उन आत्माओं को भी वासनाओं से मुक्त करने की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। वैसे तो बाबा एक सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध हमारी बनानी है, इसलिए हमें जितना हो सके स्वयं पर फोकस करना है। दूसरों पर ध्यान देने का टाइम चला गया। स्वयं को जितना तपाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, दूसरे अपने आप ही शक्तिशाली बन जाएंगे। अगर स्वयं पर ही हमने नियंत्रण नहीं किया, दूसरों पर क्या नियंत्रण करेंगे? स्वयं पर नियंत्रण नहीं है तो फिर दूसरों की कमी, कमजोरियां, दूसरों की अशुद्धियां, विसंगतियां वो हमें प्रभावित करती रहेंगी। इसलिए स्वयं को, बुद्धि को क्लियर रखना है। क्लियर करने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जब भी मौका मिला, हमने देखा है जैसे भी थोड़ा हम डिले हो जाते हैं तो सारी जैसे शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, शाम को कुछ हाथ में नहीं आता। जैसे कल की मुरली, कल सारे दिन में मुरली पढ़ नहीं पाए, गलती तो हमारी थी, पढ़ सकते थे, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं था, टाइम तो था। जहाँ टाइम को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए वहाँ हम देते नहीं हैं, जिस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए उसको पहले दे देते हैं। इतनी शक्तिशाली महावाक्य कल की मुरली में थे जो शाम को सुनने के बाद लगा कि बहुत कुछ मिस हो गया, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी तो हमारा प्रथम आसन है। वो स्वराज्य की सीट पर सेट नहीं होंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? तो जैसे हम थोड़ी सी सावधानी हमारी भूल चुक हो जाती है तो हम जैसे खाली हो जाते हैं, हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मन बुद्धि को क्लियर रखने के लिए रोज के महावाक्य से कुछ ना कुछ ले लेना है, चाहे उसको ज्ञान योग में, ज्ञान में ज्ञान का चिंतन करें, चाहे उसके योग के अभिनव प्रयोग करें, चाहे उसके नए नई बातें निकाल के उन पॉइंट को बुद्धि में घुमाते रहें, रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि मन बुद्धि हमारा शुद्ध हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। जब तक हमारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ तब तक हमारी आगे प्रगति नहीं होगी, और पुरुषार्थ हमको स्वयं ही करना है। सुन तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन करना तो हमको खुद ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हर कर्मेंद्रिय को तपाना है। अगर कहाँ भी ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो प्रवेशता हो सकती है। एक भी कर्मेंद्रिय, सारा मकान बंद है, अगर थोड़ी सी भी खिड़की खुल रही आएगी तो डस्ट वहां से आ ही जाएगी। तो ऐसे ये है कि हम देखें कहाँ कौन सी हमारी कर्मेंद्रिय ढीली है, हमें स्वयं उस पर चेक करना है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, कम नहीं है वो भी। वह माया की पावर भी कम नहीं होती, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, इसलिए प्रकृति को पहले से ही अपना सहयोगी बना लेना, उसकी सर्विस करना अनिवार्य है। और देखा जैसे जितनी प्रकृति की सेवा करते हैं समय पर सहयोग मिलता है उसको। फिर हमको ये नहीं संकल्प करना पड़ता है कि अभी हम जा रहे हैं तो बारिश ना हो, ये संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही ऐसा संकल्प करना भी एक स्वार्थ है। वैसे मौसम को अपने अनुकूल चलाना ये भी स्वार्थ है। अगर सर्दी है तो भी अच्छा है, गर्मी है तो भी अच्छा है, बरसात है तो उसका एंजॉय करो, उसका मजा लो, इस शरीर को इसी के अनुसार ढाल दो, मजा आएगा उसका। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है, उसमें स्नेह नहीं रखना है, उसमें शक्ति रूप की आवश्यकता है। कई बार हम स्नेह में आते आते पिघल जाते हैं, चाहे वो लौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा नहीं है, उधर से तो छूट गए हमारे संबंधों का, उधर से हमने विच्छेद कर लिया है, लेकिन इधर आके नए संबंधों को जोड़ लेते हैं। देखा कोई कोई होते हैं, ये मेरी मम्मी जैसी लगती है, ये मेरी बहन जैसी लगती है, ये मेरे छोटे भाई जैसा लगता है, ऐसे ऐसे फिर नए संबंध क्रिएट हो जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, एक ही मम्मी है सभी की, कौन सी जो दिखती नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें स्नेह रूप नहीं बनना है, शक्ति रूप बनना है। किस में स्नेह मूर्त, किस में शक्ति रूप बनना है, ये भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहां भी नुकसान हो सकता है ना। एक पहले भी बताया था, एक बार यहां भी ग्रुप चर्चा करते करते यहां भी एक आत्मा आ गई थी, एक दुबली पतली माता जी थी और ये टेबल उठा के एक बाएं हाथ से फेंक दिया था इधर। उसमें सूरज भाई शाम के टाइम में यहाँ क्लास करा रहे थे, ग्रुप मीटिंग चल रही थी, तो सूरज भाई बैठे थे, हम इधर ही बैठे थे, देवेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए थे। तो स्पष्ट अनुभव हुआ वो आत्मा जैसे इधर से आए, तुरंत आए और एकदम जैसे आए तो वो बहुत जोर से चिल्लाए, और वो मुस्लिम आत्मा थी, माता तो हिंदू थी, महाराष्ट्र की माता थी। उसमें जो आत्मा आई तो उर्दू बोलने लगी वो, तुम्हारा बाबा कुछ नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह ही करेगा जो भी करेगा। तो जैसे एकदम सब एकदम निष्क्रिय हो गए वो इतनी जोर से माता चिल्लाई, तो वो पहले माता प्रश्न पूछने लगी सूरज भाई से, तो उधर से दूसरे भाई ने बोला नहीं बाद में पूछना। तो जैसे माना जैसे उसको रोका तो उसने अपना रौद्र रूप ग्रहण कर लिया और बाएं हाथ से टेबल उठाया ये वाला और फेंक दिया उसको। वो तो शुक्र समझो कारपेट बिछा हुआ था, शीशा टूटा नहीं तो टूट जाता है, इतनी जोर से फेंका। तो बाद में उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दिए, धीरे धीरे वो महात्मा चली गई। फिर तो बहुत शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, लेकिन उसके लिए हमको घबराना नहीं है किसी भी हालत में। अंत में तो बाबा ने कहा एक एक में दस दस आत्माएं भी घुस जाएंगी उस पागल बंदर की तरह, वो जो पहले से पागल है और बीच में आत्माएं घुस जाए तो क्या हाल होगा। तो ऐसे अगर हमारा मन बुद्धि पहले से ऐसा है बंदर की तरह इधर उधर भटकने वाला और ऊपर से आत्माएं घुस जाएं तो क्या हालत होगी। तो स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है, निर्भयता की शक्ति, डरना नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए सुप्रीम अथॉरिटी को कंबाइंड रहना, उसके साथ हमेशा उसकी छत्रछाया में रहना है। अगर हम अनुकूल परिस्थितियों में भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेंगे। परिस्थितियां तो बाबा कहते आएंगी, प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी, आत्माएं भी आएंगी, अशुद्धि वो भी अपने अशुद्धि का प्रभाव डालेंगे, तो विकार भी हमको तड़पाएंगे, हमारे अपने ही संस्कार हमको धोखा देंगे, जिन संस्कारों को हमने परिवर्तन करना था और किया नहीं है, अंत में वो ही हमको संस्कार बुरी तरह से भटकाएंगे, धोखा देंगे, तड़पाएंगे वो। इसलिए पहले से जब तक हम ठीक ठाक है अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। अभी भी हमको पुरुषार्थ का अच्छा मौका मिल रहा है, बार बार प्रकृति भी, बीमारियां भी, कोरोना आया क्या, सबको कितना पाठ पढ़ा के गया, और रिहर्सल ही थी एक छोटी सी, संसार में ऐसा समय चल रहा है। तो इन सबको देखते हुए फिर भी हमको पुरुषार्थ के लिए अच्छा समय मिल रहा है, तो इसमें ये तो हमारे लिए जैसे गोल्डन ऑफर है, इसको हमें किसी भी सूरत पर गंवाना नहीं है, तो इसका हमको पूरा प्रयोग, पूरा फायदा लेना है। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, तो आत्माओं से घबराना नहीं है किसी से, नहीं तो कई तो छोटी छोटी बात आती है उसमें घबरा जाते हैं, छोटा सा कॉकरोच आए उसको उसी को देख के घबरा जाएंगे, उठाए वो बार वक्त उसको, कुछ भी आए। वास्तव में कोई भी हमको नुकसान नहीं कर सकता है, नुकसान वही करता है जिसका हमने नुकसान किया है, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया। हाँ, उसको रोका जा सकता है अगर पहले से हम उसको अच्छे वाइब्रेशन दें, गुड वाइब्रेशन दें, तो बाबा ने कहा ना सामने आते भी वो प्रकृति भी वहाँ रुक जाएगी। इसलिए जितना हो सके हम मनसा वाचा करुणा समन संपर्क प्रकृति को, आत्माओं को, भटकती तड़पती आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, जानवरों को, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन निरंतर, इतनी सारी सेवा पड़ी है, फिर हमको फ्री होने का टाइम मिल जाता है, वंडरफुल है। कितनी सारी सेवाएं हैं, कितना सारा आकाश देने की विधियां हैं, कितने सारे योग के अभ्यास हैं, कितना ज्ञान का चिंतन करने के लिए पड़ा हुआ, कितनी सारी ढेर सारी मुरलियां हैं, उन सब के बावजूद भी हम टाइम निकाल देते हैं जी। फिर कितने बहादुर हो गए जो बाबा कितने सर्वशक्तिवान बाप को भी अपने से बच्चे शक्ति अलग कर देते हैं, तो कितने शक्तिशाली हो गए हैं, हाथ छुड़ा लेते हैं। तो हमको ये गोल्डन ऑफर मिला है, तो इसलिए बार बार इसको, ये सही में एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसको तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फिर अंदर से हाँ लगेगा कुछ करना है, नहीं तो एक बार पढ़ना तो कुछ नहीं लगता, ठीक है ऐसे कई बार सुना देख लिया कुछ नहीं होता, ऐसे होते हैं, ऐसे संकल्प आते हैं। बार बार पढ़ेंगे तो अंदर में थोड़ी सी आग लगेगी, थोड़ा सा धक्का लगेगा, हाँ ये करना है। तो आज बाबा ने जो कहा, ये मुरली पूरी पढ़ सकते हैं, मुरली में बहुत सारी बातें और भी हैं, 18569 की मुरली है। वर्तमान में जो आने वाला है उसमें अगर परखने का गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी, ब्राह्मणों में भी ऐसा होता है, लेकिन परख तो पता तो चल जाते हैं ऐसे हैं। भले सामने वाला सोचता है मैं तो होशियारी कर रहा हूँ, चलाकी कर रहा हूँ, मेरे जैसे चलाक कोई नहीं है, लेकिन वो अपने आप को धोखा देते हैं। हर ब्राह्मण को परखने की शक्ति मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला चुप रहता है तो वो सोचता कि मैं होशियारी हूँ, सबको पता होता है। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी, परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि ये सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए ध्यान रखना है ये किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। एक बार शांतिवन में भी आत्मा, पहले भी सुनाया था, बाबा के टर्न में आई थी आत्मा, तो वो भी माता में घुस गई थी, उस समय तो हमारे साथ निकलेश भाई बैठे थे, तो वो इतना जोर से घुस गई कि क्रॉस करके जाने के लिए, सीधा स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो रही थी वो, तो हमने उसको पकड़ लिया उधर, दूसरे भाई हाथ नहीं लगा रहे, तो हमने तो उस माता को पकड़ लिया इधर से, लेकिन इतना जोर उसमें, बात मत पूछो। तो फिर एक पाँव था, हमने उसके पाँव पर रखा, यहाँ से पकड़ा, फिर निकलेश भाई ने पकड़ा, फिर उसको उठा के बाहर ले आए, फिर थोड़ा निकलेश भाई ने अपने मंत्र मंत्र पढ़े, पानी वानी उन पर छींटे दिए, थोड़ा सा शांत हो गया, तो फिर शांत हो गया। उसके बाद उसको हमने एक एप्पल दिया, फिर अंदर जहाँ हम कुर्सी पर बैठे थे उसको कुर्सी पर बिठा दिया। थोड़ी देर में बाद फिर वो आ गई वापस, जैसे वापस आई तो फिर वही प्रतिक्रिया उसकी, नहीं मुझे तो आगे मिलने जाना है। तो हमने कहा आपको जाना है तो बाहर से ऐसे जाओ ना, अंदर से थोड़ा जा सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल से फिर उसको बाहर पकड़ के लाए, तो कोई भाई बहन ने बड़ा उल्टा सुलटा कहने लगे, इसको ये मारो वो मारो, तो हमको बहुत ख़राब लगा कि एक तो पहले बेचारी के अंदर आत्मा आई है और वो कुछ प्राप्ति के लिए आई, और ऊपर से हम उसको बुरा कह रहे हैं कि उसको मारो ये करो, उसको तो हमारा फर्ज है उसको तो राहत देना और उसको रास्ता दिखाना, उसको छुड़ाना उस चीज़ से। तो हम और निकलेश भाई उनको ले गए थे तपस्या धाम में, तपस्या धाम में बैठ के हमने फिर उसको कहा कि आप बाबा से दृष्टि लो। फिर उसको हमने पूछा कि आप इसके अंदर क्यों आती हो, तो बोला इसने पिछले जन्म में हमको सारे परिवार को बहुत दुख दिया है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर हमने पूछा आप कहाँ से आई हो, तो बोला जयपुर से आई हो। मैंने कौन से गांव से, बोला वो नहीं बताऊंगी मैं, क्यों बताऊंगा गांव से, और वो माताजी दिल्ली नरेला नगर से थी। फिर वो उसके जो माताजी के साथ थी उनको भी पता चला ऐसे ऐसे हो, तो वो भी लोग आ गए थे पाप में। तो फिर हमने बोला बाबा से दृष्टि लो, देखो अगर आप इसके अंदर आते हो तो एक आपका भी नुकसान और इसका भी नुकसान, दोनों का नुकसान हो रहा है, आप बाबा से दृष्टि लो आप मुक्त हो जाएंगे। तो बड़ा देर सुनने के बाद ही फोर नहीं दृष्टि ले, फिर हमने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं बोला देखो मैं आपका भाई हूँ ना, तो मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है आपको दुख दर्द झेलना तो झेलो, लेकिन आपको अगर मुक्त होना है तो बाबा से दृष्टि ले लो, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो थोड़ा सा फिर उसने उसको राहत मिली, तो जैसे उसने बाबा से दृष्टि लेने की, तो दो मिनट के बाद जैसे एकदम ठीक हो गई, तो माता अपने असली हुए वो आत्मा वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो भाई मेरा था दिल्ली नरेला नगर वाला इधर मधुबन में, तो हमने पूछा वो क्या हुआ माता का, बोला अभी नहीं आती उसके अंदर वो आत्मा। तो आत्माएँ आती हैं जब अगर हम कमज़ोर हैं तो, लेकिन उनको ट्रीटमेंट प्यार से करना है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उनको करते रहें, आत्माएँ प्यार सम्मान स्नेह की भूखी हैं। तो उनसे घबराना नहीं है। हाँ जी, लाल मिर्ची, ये लाल मिर्ची को हम अज्ञान काल में देखा हुआ, किसी को लाल मिर्ची उसी हालत खराब कर देते थे। हाँ हाँ, अगर ईश्वरीय शक्ति अगर हमारे पास है तो हाँ, आत्माएं तो आएंगी आएंगी, नहीं वो तो आती है ना, आपने देखा होगा कई बार आत्माएं चिल्लाती हैं आगे। हाँ नहीं, आएंगी ना, अपना हक तो लेने के लिए आएंगी ना, क्यों नहीं आएंगी। अब घर में माँ बाप के बच्चे बिगड़ गए हैं, बरसा लेने के लिए, अपना हक लेने के तो आएंगे, वो चिल्ला के भी आएंगे, वो तो लेंगे लेंगे, भले भगवान सामने बैठा हो, लेकिन अपना हक तो लेने आएंगे ना, वो आएंगे आएंगे वहां तो, क्योंकि बाबा ने बोला ना, वही कम पावरफुल नहीं है, माया भी पावरफुल है, बाप भी पावरफुल है, बाप भी सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। हाँ, और अशरीरी होने से तो वैसे शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। हाँ तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बहुत संभाल रखनी है, कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग अग्नि से काम लेना है, हर कर्मेंद्र को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई बार नहीं कर सकेंगे, थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो जाती है, हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, ये माया की पावर भी कम नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। अगर हम अपनी मर्यादाओं में भी नियमों में ढीले होते हैं तो भी आत्माएं प्रवेश कर सकती है, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मुहूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है ये भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है, माया को चाय पानी पिलाया तो वो बैठ जाएगी, जाएगी थोड़ी नहीं। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उनके स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब डैश की आवश्यकता है, शक्ति रूप की आवश्यकता है। ये आज के महावाक्य थे, तो सारे दिन में कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ में कुंड में स्वयं को झोंक देना है। ओम शांति।
युगों युगों के जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं, भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं।
जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं, भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं।
ऐसी किस्मत सबकी जागे,
ऐसी किस्मत सबकी जागे, गाते मन के तार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। माता पिता भाई बहनों का, माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।